स्वरूप सिद्धि हुई है या स्वरूप सिद्धि नहीं है, अभी अनर्थ दूर हो गया और वो निष्ठा के रूप में या रति उसकी थोड़ी सी आसक्ति हुई है, तो उसका कोई जरूरी जन्म जरूरी नहीं है कि इसी जन्म इसी ब्रह्मांड में हो। जहां पर उसके लिए सुविधा होगी वहां पर उपयुक्त स्थिति में उपयुक्त संग पाने के लिए साधन साजन करने के लिए उपयुक्त देश को जन्म प्रतीक्षा भी कर सकता है, भगवान उसके लिए व्यवस्था करेंगे। इसलिए इन लोगों का उस समय में मारा जाना, इस समय द्वापर के अंत में जन्म लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए जो ब्रह्मांड का संचालन करने वाले हैं। उन्होंने आकर के कहा कि देखो संप्रति काल नेमी आदि समस्त दैत्य लोग पृथ्वी में प्रजाओं का पीड़न कर रहे हैं। देवासुर युद्ध में के समय में देवता दानवों का जो युद्ध हुआ था उसमें हिरण्याक्ष का पुत्र काल नेमी विष्णु के चक्र से मारा गया। अब वही उग्रसेन के पुत्र के रूप में कंस में द्रिमूल दैत्य के औरत से पैदा हुआ है। ऊपर से मालूम होता है ये उग्रसेन का पुत्र है किंतु उग्रसेन का पुत्र नहीं, अरिष्ट धेनुक केशी प्रलंब नर सुंदर बाण बलि के पुत्र बाण असंख्य महाबल पराक्रांत ये सब असुर लोग अब इस समय में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हैं और पृथ्वी के लिए उत्पात अत्याचार इत्यादि कर रहे हैं। इनको हराना सबके लिए संभव पर नहीं है। ये समस्त दैत्याओं देवताओं का आभार हमारे ऊपर में पृथ्वी करे जी हमारे ऊपर में पड़ रहा है, प्रभु आप यदि रक्षा नहीं करें तो हमारा पाताल में जाना अवसंभावी। विशेष करके आपने इन चीज इन लोगों की सृष्टि आपने की, ऐसे जीवों की आप क्यों सृष्टि करते हैं? ये नहीं कहा जो उन मैंने ये तात्पर्य नहीं ये से उनकी आत्मा की सृष्टि, हाँ उन लोगों को क्यों जन्माया इस जगत में, इसलिए आप ही इसकी विशेष व्यवस्था कर सकते हैं। विशेष इसमें ये ब्रह्मा मैं जाकर के मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए इसका निदान मांगने के लिए ब्रह्मा जी जो इस सबका सृष्टि का संचालन कर रहे हैं उनके पास में गई। जब उन निर्णयों की सृष्टि करते हैं व्यवस्था करते हैं जन्म इत्यादि देते हैं तो जरूर इसकी व्यवस्था करेंगे, इसलिए उनके पास में गई। पृथ्वी जाने के बाद में ब्रह्मा जी से उसकी बात अब अगले कल कहेंगे, आज यहीं तक वंचा कल्पतरुभ्यस्मिवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मां चरणं भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधाम् मधुरस्मितास्यां वदामि राधाम् करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्नकार। गंगा अथवा भगवान का चरणामृत तीन पुरुषों को तार देता है, ऐसे ही भगवान की कथाएं तीन पुरुषों को तार देती हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है, मतलब प्रसन्न होकर के उनकी प्रशंसा की, साधुवाद दिया और उससे कहने लगे। भागवत की कथा को कौन समझेगा, कौन समझेगा? जज्जाता नष्ट की रति, भगवान की कथाओं में जिनकी नष्ट की रति है, नष्ट की श्रद्धा नहीं, श्रद्धा निष्ठा हो जाती है तो बुद्धिपूर्वक उसको हरिनाम करता है सुनता है और ये खूब अच्छी तरह से रसास्वादन करेगा जिनकी नैष्ठ की रति है, ये लोग रसास्वादन करेंगे और लोग सुनेंगे भगवत भजन में प्रवृत्त होंगे। और जिनको ऐसी कथा में नैष्ठ की रति हो गई है वो लोग इस चीज का रसास्वादन करेंगे। इसलिए पहले श्लोक में दूसरे श्लोक में बतलाया
निगम कल्प तरूर गलितंग फलम सुख मुखाद अमृत संजितम पिवत भगवत भागवतम रस माय मालयम हो रसिका भूभाग रसिका और भाव का कोई संबंधन किया है। अब वो कुछ इसके बाद में भूमि दृप्त निपव्याज कहा तो था दैत्यानिक सता जुथई आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मानम शरणम जय ये तो कहा था। गौर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना रुदंती करुणम विभो उपस्थितांति के तस्मै व्यसनम समोव ब्रह्मा तत्पधार्य अत सह देवस्तया सह जगाम सत्रिनस्तिरम क्षीरपयोनिधे तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहिता पहले भूमि दृप्त निपव्याज ब्रह्मानं शरणं जयौ इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक प्रश्न उठाया ब्रह्मानं शरणं गयौ जयौ कहां पर ब्रह्मा जी के पास में गई पृथ्वी क्या वो सप्तलोक में गई जहां की ब्रह्मा जी रहते हैं
ब्रह्मा जी गए
ये गो कहां गई ब्रह्मानं जयौ ब्रह्मा के पास में गाय जो गई रोती हुई गाय के रूप में तो वो कहां गई और ये तो सीधा साधा है कि ये ब्रह्मलोक में गई सप्तलोक में नहीं सप्तलोक में नहीं गई क्यों नहीं गई इसका कारण है इसके पूर्व में जबकि कृष्ण का जन्म नहीं हुआ सत्यजू का समय था उस समय रैवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास में गए पूछने के लिए इसको किसको हम वर से शादी करें ये ब्रह्मा जी से पूछ करके तब करेंगे योग्य वर से शादी करेंगे तो उस समय हु गंधर्व एक प्रकार के होते हैं जो नृत्य करने में और गान करने में बड़े कुशल होते हैं उनका नृत्य वहां पर हो रहा था सप्तलोक में उन्होंने कहा या भी बैठो यह कीर्तन हो जाएगा गान इनका समाप्त होने पर तुमको मैं बतलाऊंगा जो कुछ पूछना हो इशारे से उसको बैठा दिया और वो भी नृत्य और गीत उनके दर्शन में ऐसे लग गया कि वो भी दोनों दर्शन से मुग्ध हो गए कुछ देर के बाद में जब कीर्तन समाप्त उनका हुआ नृत्य और गीत ब्रह्मा जी ने कहा जी कैसे आए उन्होंने कहा जी ये मेरी लड़की है मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ आप कृपा करके कोई योग्य वर बतलाएं ब्रह्मा जी ने कहा जाओ माथुर मंडल में कृष्ण और बलदेव आविर्भूत हुए स्वयं भगवान और इस समय में वो पृथ्वी लोक में द्वारका के अंचल में वो लोग अभी विराजमान हैं तुम वहीं जाओ और बलदेव जी इसके योग्य पात्र हैं उससे तुम उनकी शादी करो उस समय में कृष्ण का आविर्भाव हो गया है वो जो गान हुआ वो गान कितने समय का हुआ वहां के लिए मान ले कि आध घंटा की एक घंटा किंतु यहाँ के लिए कितना समय होगा इतने में सत्यजुग चला गया त्रेता चला गया द्वापर भी अवशेष होने को समाप्त होने को है इतना उनको समय लग गया वहां से झट मन की गति से यहाँ पर आए और उन्होंने कन्या को बलदेव जी के साथ में शादी की बलदेव प्रभु जी ने फल से उसको नीचा कर दिया और अपने योग्य बना लिया तो उस समय में वहां पर कौन है बैराज हिरण्यगर्भ ब्रह्मा वह है गर्भा ब्रह्मा जो कंट्रोल करते हैं सबको उनके अंडर में एक और होते हैं बैराज ब्रह्मा तो ये बैराज ब्रह्मा के पास में सुमेरु पर्वत के ऊपर मिले और इनसे बातचीत, वो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जो है उनसे बातचीत नहीं हुई। ये जो ब्रह्मा है यही जगत का संचालन यहाँ रह करके करते हैं, इसलिए गाय वहां पर गई, वहां नहीं सुमेरु पर्वत के ऊपर में। और वहीं पुरुषों ने कहा वैराज ब्रह्मा में और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा में समझना चाहिए क्या पार्थक्य है। ब्रह्मा कहने से वो एक ही नहीं हो जाएंगे, उसी तरह से शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं कहाँ पर कौन रूप में किस रूप में कही गई हैं, इन चीज़ों को नहीं समझने से आदमी नहीं समझता, मिसगाइड हो जाता है। इसलिए मुक्त महापुरुषों की भाष्य और टीका इत्यादि की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से उस जाना जाए, वो भी टीका से भी और एक्सप्लेनेशन भी समझ में नहीं आएगा, टीकाकार या भाष्यकार या कथा कहने वाला एक भाव कह रहा है और हम उसके भाव में सजातीय नहीं है तो दूसरे रूप में समझेगा। आपने मुझे मार डाला, गोपियों ने कृष्ण से कहा, इसका अर्थ क्या है आपने मुझे मार डाला, तो इसका मतलब सीधा साधा है कृष्ण ने तलवार ली और उनको मार डाला या कैसे भी मार डाला, और इसका एक भाव भी वाले जब बीरह में मार डाला, ऐसा भी हो सकता है, तो कौन सा ठीक है? नहीं तो आदमी समझ जाए मार डाला तो ये मारी डाला, हाँ तो वैसे ही मार डाला, मरने के पहले ही आदमी कह सकता है किसी ने मारा उसको और मरने वाला आपने तो हमें मार डाला, और थोड़ी देर के बाद में प्राण निकल जाएंगे मर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। जैसे भीम ने उसको दुर्योधन को मारा, उसने कहा कि हमारा टांग तोड़ दिया अब हमें मार डाला, और 24-25 घंटे के अंदर में तो वैसे ही मार डाला। और किस भाव से शास्त्र में कहा गया है ये समझने के लिए वैसा ही भाव होना चाहिए। इसलिए शास्त्र पढ़ करके भी समझ में नहीं आएगा, जहां भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण, तो उनकी स्फूर्ति से और इनकी बातों से तब कुछ कुछ समझ में आएगा। यदि क्यों रोती ही ब्रह्मा के पास में गई थी तब बतलाया है, पृथ्वी के लिए पहाड़ पर्वत के भार भार नहीं है, असुर लोगों का दैत्यों का भार ही उनके ऊपर में भार है। दैत्य किसको कहते हैं? दीति से जो जन्मे नहीं है किंतु उन्हीं जैसा भाव वो सभी ही दैत्य हैं, सब दैत्य हैं। दैत्य दीति से दानव भी होते हैं, ये सब दानव। रावण दीति से नहीं जन्मा किंतु दैत्य दानव। कंस दीति से नहीं जन्मा तभी ये दानव, पहले जन्म में जन्मा था। ये होते रे मेरे कम तो चोख खराब हो जाए। ब्रह्मा जी के पास में गाय गई, कल बतलाया था ये किस लिए गई, ये जो भार है ये साधारण के द्वारा दूर नहीं होगा। जिस ब्रह्मा ने इस पृथ्वी इत्यादि का सृजन किया है और इन बच्चों को भी जन्म इत्यादि दिया है, वो यदि चेष्टा करें तो सजी होगा, या किस लिए हो रहा उनके पास में जाने से संभव है, हमारा दुख दूर हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी के पास में गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब देवताओं को साथ लेना जरूरी है, शंकर जी को साथ में भी लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैं जब जाऊंगा श्रोतसाई विष्णु के पास में, तो मैं सृष्टि करने वाला हूँ, संहार करने वाले शंकर हैं और पालन करने वाले कौन हैं? ये पालन का कार्य है, भार उतार करके किसी का दुख दूर करके उसका पालन पोषण करना, ये उन्हीं का है काम। हमारा काम तो केवल
सृष्टि करना।
सृष्टि माने जीवों का नहीं, जीवों के बाहरी ये शरीर का, भोगायतन शरीर का सृष्टि करना मेरा कार्य है। और शंकर जी इसको करुणा पूर्वक जब समय होता है तो उसको संहार करते हैं। तो हम लोग जाएंगे अभी उनके पास में, संहार करने की जरूरत नहीं है और सृष्टि करने की भी अभी आवश्यकता नहीं है, इसलिए पालन का कार्य है। विष्णु के पास में हम लोग चले, विष्णु के पास में गए, सोचा इंद्र इत्यादि देवता लोग हैं, ये दिक्पाल हैं, सब प्रकार से रक्षा इत्यादि करते हैं, आधिकारिक देवता हैं, और शंकर जी संहार के देवता हैं, इनको भी साथ ले चलें, और यदि वो हठात आदेश देंगे तो इनको बतला दिया जाएगा, इनको आदेश वो डायरेक्ट दे देंगे, हम इनको डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकते हैं, इसलिए इनको साथ लिया जाए, तो वहीं पर साथ ही साथ में सब समाधान हो जाएगा। इसलिए समस्त प्रतिनिधि मिलकर के उनके पास में गए। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपस्थिते समाहित। अब वहां पर जाकर के देवादेव, देवों के देव जगन्नाथ के पास, जगत के नाथ हैं ये क्षीरोदशाई, इनके पास में गए और समाधि लगा करके पुरुष सुक्त के द्वारा प्रार्थना करते हुए समाधिस्थ होकर के उनसे वो प्रार्थना करने लगे। वृषा कपिम माने क्या क्या है उसमें? वृषा कपिम बरसत कामान को बरसान माने वृष्टि करते हैं कामों की, जैसे जैसे जिनकी कामना होगी वो पूर्ति करने वाले हैं। बरसत कामान और
आपम प्रयति क्लेशान, कामना को पूरा करते हैं, क्लेश को दूर करते हैं।
इसलिए वृषा कपिम कहा, तो ये इसलिए कहा कि आप तो क्लेश को दूर करने वाले हैं और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए हम देवताओं की पृथ्वी की आप कामना पूर्ण करें। इस प्रकार से समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ होने के बाद में कितनी देर हुई ये नहीं लिखा। गिरम समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेधास्त्री दशानुवाच गांग पौरुषिंग में सुनताम अमरा पुनः विधीयताम आशु तथैव माचिर। गिरम समाधौ, समाधि लगाई, देवता लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तक हम लोगों ने विष्णु का दर्शन नहीं किया, आज ब्रह्मा के भी उपास्य विष्णु का हम दर्शन करेंगे, ये समाधिस्थ हैं। और ब्रह्मा के समाधिस्थ होने पर वो प्रभु इनको दर्शन देने के लिए आएंगे, या जो कुछ आदेश देंगे हम लोग भी श्रवण करके हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए वहां पर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। इतने में कुछ दिन हो जाने के बाद में गिरम समाधौ गगने समीरितां, आकाश में अर्थात समाधि के आकाश में, समाधि में देखा जो आकाशवाणी हो रही है, आकाशवाणी अलक्ष रूप से जो वाणी होती है, ये वाणी उनके प्रभु की वाणी है, ब्रह्मा जी के अर्थात गर्भदशाई की ये वाणी है। आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी को भी दर्शन नहीं दिया, समाधिस्थ होने पर भी ब्रह्मा जी को भी जो दर्शन नहीं दे रहे हैं गर्भदशाई, उनके अंशी मूल कृष्ण ब्रज में प्रकट होकर के गोपाल बालकों का साथ में खेल रहे हैं, गोपियों के साथ में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, मैया यशोदा उनको तारण भर्षण कर रही है, ये आश्चर्य की बात है। इसी चीज को सूचित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी अथवा व्यास जी, इन लोगों के लिए संभव पर नहीं है किन के लिए? गर्भोदशाई, कारुणोदशाई या गर्भोदशाई, इन लोगों के लिए संभव पर है। नारायण के लिए भी जो संभव नहीं है, वो गोप गोपियों के साथ में खेलेंगे, उनको दुर्योधन जैसे लोग, जरासंध जैसे लोग उनके साथ में उनको दर्शन करेंगे, कृष्ण को मारने के लिए चेष्टा करेंगे, वाणी के द्वारा उनकी प्रत्यक्ष रूप में निंदा करेंगे। सखा लोग उनसे तरह तरह से खेलेंगे, गौओं को उच्चारण करेंगे, किंतु ये नहीं आएंगे साथ में, गर्भदशाई नहीं। इसलिए ये दिखला रहे हैं कि वो प्रभु अब शीघ्र ही अवतरित होकर के वृंदावन में रसमयी क्रीड़ा करेंगे, जिसको परीक्षित महाराज जी आप सुनना चाहते हैं, अब वही प्रसंग में अवतरित करता हूं। इसका ये तात्पर्य है। निशम्न बेधा, बेधा कहते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी त्रिदशानुवाच, त्रिदशा माने होता है देवता, देवताओं से उन्होंने कहा, उनकी समाधि भंग हुई, प्रभु की वाणी उन्होंने सुना, उस वाणी को ये लोग भी नहीं सुन सके, देवता लोग कोई भी शंकर भी नहीं सुन सके उनकी वाणी को, केवल ब्रह्मा जी सुने और उन्होंने बतलाया कि मैंने समाधि में ये सुना है। होने से भी क्या, वो तो समाधिस्थ नहीं हुए जो सुने, ब्रह्मा जी ने सुना और फिर उन्होंने ही कहा। गान पौर सिंह में सुनताम अमरा पुनः विधियताम आशु तथा माचिरम, गाह माने बाणी, पौर सिंह हमारे प्रभु ने कहा है कि पौरुषी गान मैं सुनू, हे अमरगण, हे देवता लोग, मैंने अपने जिनकी समाधि में ध्यान लगाया था उन्होंने जो कहा है वही आपसे कह रहा हूं, मैं इनकी वाणी को दोहरा रहा हूं, अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, पौरुषम गा सुनो, तुम सुनो, हम वो कह रहे हैं गर्भदशाई जे कह रहे हैं जे पुरुष जो हैं जो उनसे भी श्रेष्ठ हैं उनके भी मूल अंशी हैं, वो हमको आदेश दिया है, किसको, गर्भदशाई को, गर्भदशाई को आदेश दिया, वो आदेश मैं तुमको सुना रहा हूं। इसलिए ये कौन कह रहा है, स्वयं साक्षात कृष्ण ने ही इनको सुनाया, किनको, गर्भोदशाई, और उन्हीं की वाणी को ये देवताओं ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं की बात तुम लोग सुनो, उन्होंने कहा है क्या, विधियता मासु तथा माचिर, बहुत जल्दी से जो उन्होंने आदेश दिया है उसको तुम लोग श्रवण करके जल्दी से जल्दी उसका कार्य रूप में परिणत करो। पूरा एव पुंसांग अवधितो धराज्वरा, पूरा एव मैंने पहले ही हमारे यहां आने के पहले ब्रह्मा जी से करें, तुम्हारे आने से पहले ही, समाधि से पहले ही, पुंसांग सवई पुंसांग, सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्त, वहां पर पुंसांग माने क्या, पुंसांग शब्द का अर्थ अंत तक अपनी मुक्त प्रग्रह वृत्ति से कृष्ण में पर्यवसित होता है, इसलिए उस पुरुष ने कहा है पूरा ये पुंसांग, ये कौन कह रहा है, ये गर्भदशाई कह रहे हैं, गर्भदशाई कह रहे हैं ये तुम्हारे मेरे पास आने के पहले ही पुंसांग वो पुरुष जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष कृष्ण हैं, उनको अवधितो जरा धरा, जरा का धर, धरा का ज्वर, ज्वर माने क्या, ताप, ताप माने दुख, पृथ्वी को जिस ताप या दुख है कि असुर लोग बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, पृथ्वी उससे बाहर से दब गई है और वो सातल में जाने वाली है, इस बात को वो पहले ही जान लिए हैं। भवद भी बंसई, अब आप लोग भवदभि वंशई जदुर जदु उपजन्यताम जदुषु। अब भवदभि वो जान गए हैं इसलिए वो अवतरित होंगे, आप लोग भी भवदभि उनके जो परिकर हैं, भवदभि माने उनके जो परिकर हैं, भवदभि वंशई वंशी माने सात्विकी, उद्धव, पांडव और जो भक्त हैं, ब्रजवासी हैं, नंद बाबा, यशोदा इत्यादि, गोलोक वृंदावन में द्वारका के जो परिकर हैं वो द्वारका के परिकर और जो वृंदावन वाले हैं उनके परिकरों में, विशेष करके ये उनके द्वारकापुरी वाले उनके परिकरों के में जो जदु लोग हैं, जादव लोग हैं, उनमें जन्नताम आप लोग जन्म ग्रहण करें। जदुकुल माने पांडव भी आ जाएगा, जदुकुल में आप ये वृंदावन के नंद बाबा इत्यादि भी आ जाए, विष्णु कुल वाले और सब जितने हैं ये सभी लोग हो जाएंगे। सा जावत उर्व्या भरमेश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या खपयन चरत भुवि। सा जावत जब तक वो पुरुष इस पृथ्वी में रह करके पृथ्वी का भार हारण करेंगे, वो कौन ईश्वरों के जो परम ईश्वर हैं, जब तक ही रहेंगे इस जगत में, स्वकाल शक्त्या अपनी काल शक्ति से पृथ्वी का भार हरण करेंगे, जब तक खपयंस चरे भूवि आप लोग भी उनके साथ में रह करके खपयन अने वहां तक रहे पृथ्वी को और उनकी सब प्रकार से आनुकूल्य विधान करें, पृथ्वी में रहें। इसलिए जब तक कृष्ण थे तब इंद्र आए और कृष्ण के परिकर अर्जुन में प्रवेश कर गए, पवन देव भीम में प्रवेश कर गए, सूर्य देव कर्ण में प्रवेश कर गए, महाराज धर्मराज जम युधिष्ठिर में प्रवेश कर गए, नकुल सहदेव में अश्विनी कुमार, उसी तरह से और देवता लोग। अच्छा तो देवता लोगों को दुर्योधन इत्यादि के रूप में भी आना पड़ेगा, उनमें असुर रहेंगे, असुरों का समावेश, और वह असुर वहां है नहीं, इसलिए इन लोगों से जो भार पड़ा हुआ है तब करने क्यों आ गया सूर्य के रूप में, एक तरह से वो भी तो असुर है, नहीं कुंती के गर्भ में आया और सूर्य के अंश से आया है, उसकी इच्छा नहीं थी, किंतु कृष्ण ने अपनी जोग माया से या जैसे उसकी बुद्धि ऐसे कर करके अर्जुन को दुर्योधन को उत्साह दिला करके सब पृथ्वी का भार हरण करने के लिए उसको उत्तर में रखा। वो भी धर्मात्मा था, बहुत दानी था, दुर्योधन ऐसा नहीं था, किंतु होने पर भी उसका पक्ष लिया, इसलिए यह गड़बड़ी हो। इसलिए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये कर्ण ये सब धार्मिक व्यक्ति थे, किंतु कृष्ण ने देखा जिससे पृथ्वी का भार हरण नहीं होगा, इसलिए इनको निमित्त बना करके उसके तरफ में कर दिया और उनके द्वारा असुरों को बार बार लेकर के और ध्वंस कराया। ब्रह्मा जी की बात सुन करके इंद्र, देवृंद, शंकर जी और पृथ्वी परमानंद से भर गए, बड़े उत्साहित हुए। गर्भदशाई की बात क्या, आज स्वयं सबके प्रभु यहां आ रहे हैं, इसलिए वो लोग बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवेंद्र, क्षीरोदशाई, क्षीरोत्तीर में गए थे ना, क्षीरोदशाई ने आदेश किया है, हे देवगण, पृथ्वी भार हरण के लिए तुम लोग हमारे शरणापन्न हुए हो, माने क्षीरोदशाई कह रहे हैं, किंतु हमने पहले बताया था गर्भोदशाई, ब्रह्मा ने कृष्ण की ही वाणी, आप पृथ्वी को, पृथ्वी के लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उनके आदेश से ब्रह्मांड का पालन में मैं लगा हुआ, मैं ब्रह्मांड का पालन करता हूँ। इसलिए परम अंशी, हम लोगों के जो परम अंशी स्वयं भगवान गोलोकपति कृष्ण इस बार स्वयं इस पृथ्वी लोक में अवतरित हो रहे हैं, तुम लोग अब उनका जो आदेश है उसको पालन करो। ने भी ऐसा लिखा है, ये भी बतला रहे हैं, गर्भोदशाई इच्छा करने से असुरों का ध्वंस कर सकते हैं और जुगावतार का कार्य कर सकते हैं, युग धर्म का प्रवर्तन कर सकते हैं, किंतु मधुर मधुर लीलाएं जो हैं ब्रज की वो नहीं कर सकते, इसलिए स्वयं कृष्ण वहां पर पधार रहे हैं। बहुत दिन हो गया, अपने इस भाव को जगत को नहीं दे सके हैं, इसलिए उसका आस्वादन करने के लिए और जगत में उस प्रेम का वितरण करने के लिए कृष्ण को जगा दिया, कृष्ण मैं जाऊंगा, ये भी काम हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, यदि वो इच्छा करते तो वहीं जराने से इच्छा करने मात्र से पृथ्वी का भूभार हरण हो जाता, किंतु लीलाएं नहीं होती, नर्वत्य उन्होंने लीलाएं की और साधारण लोगों को भी ये दिया है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। एते ही यादवा सर्वे मदगुना एव भामिनी, पद्म पुराण में बतलाया जाता है, बतलाया गया, ये जितने भी यादव हैं हमारे नित्य पार्षद हैं यादव लोग, कंस यादव था कि नहीं, कंस नहीं था यादव, उस वंश में जन्मा ही नहीं था, ये द्रुमुल दत्त के वंश में जन्मा था, इसलिए ये यादव नहीं, किंतु साधारण लोग जो नहीं जानते हैं उसको यादव मानेंगे, साधारण दृष्टि से भोजराज बोला गया है किंतु भोजराज था नहीं, इसलिए हमारे अति अत्यंत प्रिय और हमारे न्याय गुण संपन्न हैं ये सब जितने यादव हैं, विशेष करके प्रद्युम्न, अनुरुद्ध, संकर्षण और सब ये कृष्ण के और दूसरे जो लड़के हैं सांब, ये सब एक एक से महारथी, ये भगवान के गुण के समान हैं, ये लोग चाहे तो पृथ्वी का भूभार हरण इत्यादि कर सकते हैं, किंतु कृष्ण नर्वत लीला कर रहे हैं, ये लोग भी नर्वत लीला कर रहे हैं, जैसे रामचंद्र जी नर्वत लीला करते हुए वो कौन सांपों के गरु नहीं सांपों के पहाड़ों से बंध गए थे, नागपाश में बंध गए थे और उनको खुद नहीं दूर कर सके, गरुड़ जी के आने से वो दूर हुआ, ये सब नर्वत लीलाएं हैं। इसमें बतला रहे हैं कि भगवान के आदेश से देवता लोग जदुवंश में प्रकट हुए थे, महाभारत और हरिवंश में देखा जाता है कुरुक्षेत्र के युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध और जदुवंश ध्वंस के पश्चात यादव जितने थे वो आत्मीय वर्गों के साथ में स्वर्ग में गमन किया उन लोगों ने, ऐसा लिखा है पद्म पुराण के वचन के अनुसार में। और उधर में पद्म पुराण में क्या लिखा, ये लोग मेरे परिकर हैं, हमारे समान बल विज्ञ सब इसमें प्रभाव में हैं। पद्म पुराण के वचन के अनुसार में जादुओं को भगवान का नित्य पार्षद स्वीकार करने पर फिर स्वर्ग में गमन करने की संभावना नहीं हो सकती, वो स्वर्ग में कैसे जाएंगे, क्योंकि पार्षद लोग भगवान के प्रकट लीला के बाद में भगवान के सहित नित्य धाम में गमन करते हैं, किंतु ये स्वर्ग में कैसे जाएंगे। भागवत के वचन के अनुसार में यदि देवगण ही यदुवंश में अवतरित हुए हैं तो फिर ये लोग तो स्वर्ग में जाएंगे, भगवान के नित्य परिकर नहीं है। इसलिए इसको सामंजस्य करने के लिए ऐसा बतलाया गया है, ये दोनों में कोई भूल नहीं है। द्वारका के या ब्रज के परिकर लोग यहाँ जब आए तो देवता लोग भी उनके अंदर में प्रवेश करके अंशी रूप में भगवान की सेवा इत्यादि किया, और जब लीला समाप्त हो गई तो ये लोग स्वर्ग में गए और नित्य परिकर लोग द्वारका में चले गए। बल्कि ये भी कहा गया कि द्वारका धाम गोलोक में नहीं गए, वो यहीं के वहीं जत्र सन नहीं तो हरि, या द्वारका को कभी छोड़ करके नहीं जाते, आप वृंदावन वाले वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते, उस अप्रकट लीला में प्रविष्ट हो गए। यहीं पर अभी तक लीलाएं हो रही हैं, द्वारका में भी द्वारका की लीला, मथुरा में मथुरा की, वृंदावन की लीला वृंदावन में हो रही है, किंतु मुक्त पुरुष इसको देख सकते हैं। उद्धव जी ने देखा, कभी कभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी भी देख सकते हैं, ऐसे मुक्त महापुरुषों से इन लीलाओं को अभी भी देख सकते हैं। इसलिए वैष्णव तोषिणी ने यह कहा है, तेषामेव स्वर्ग गमनम अधिकारास्ते तत् प्राप्तिर्ज्ञा। ये सब सिद्धांतों को समझना चाहिए। जादव लोग असंख्य हैं, उसमें कोई बद्ध जी भी हो सकते हैं, नरलीला है ना, उसमें जो अधिकारी हैं वो कृष्ण के परिकर हैं, और जो अधिकारी वैसे नहीं हैं, साधारण लोग जो हैं वो देवताओं के अंश से जो आए थे वो देवलोक में जाएंगे, और दूसरे जो कृष्ण के उसी में रह करके विरोध भी करते हैं साधारण जैसे हैं, उन लोगों का क्या होगा, वो लोग न तो स्वर्ग जाएंगे न वहां जाएंगे। तब हाँ उनकी सुकृति कुछ हुई होगी, उसके अनुसार में उनके ऊपर में विचार किया जाएगा। इसलिए जादव का असंख्य, उनमें से जो देवता लोग थे वो स्वर्ग में गए, और उनके जो परिकर वर्ग थे वो नित्य धाम में गमन किए थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बतलाया है, कृष्ण के अंश उद्धव हैं, सात्विकी प्रभृति पार्षद ये हैं, देवताओं ने इनमें प्रवेश करके जन्म लिया। इस व्याख्या से भागवत और पद्म पुराण ये सभी लोगों का सामंजस्य हो जाता है। आप लोग सुनेंगे पांडव लोग अंत में अंतिम अवस्था में कृष्ण के वियोग होने के बाद में स्वर्गारोहण किया। स्वर्गारोहण में द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सभी लोग गल करके खत्म हो गए, मर गए। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज एक कुत्ते को लेकर के स्वर्ग में गए, कुत्ता माने ये धर्मराज था, स्वर्ग में गए। स्वर्ग के बाद में वो नित्य धाम में पहुंचे गोलोक, और वहां देखा कि अर्जुन हंसते हुए मुस्कुराते हुए गोविंद के साथ में खड़े हैं और उनका अभिवादन कर रहे हैं, आइए आइए पधारिए विराजमान। ये बड़े प्रसन्न हुए कि हम तो वहां पर उनको छोड़ करके आए और हमसे पहले ये पहुंच गए। द्रौपदी को देखा, नकुल सहदेव को देखा, सब लोगों को देखा। इसके द्वारा क्या बोध होता है, तो महाभारत में झूठ लिखा गया तो ये कैसे, ये मैस्मेरिज्म है, इसमें भक्त लोगों को आनंद होता है ऐसी लीलाओं को श्रवण करने से, भगवान का तत्व जानते हैं, और साधारण आदमी इस तत्व को नहीं जान करके वही कृष्ण का वध हो गया, कृष्ण मर गए, उनको बाण लगा, उनका संस्कार हुआ, उनके शरीर को जला दिया गया इत्यादि, ये सब ऊपर से दिखता है। किंतु इन बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। साधारण पाठक लोग गुरु परंपरा से इस चीज को नहीं पाते हैं, इसलिए वो लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं, शुद्ध विचार को नहीं जानते। इसीलिए हरिवंश में देखा गया है, युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के परम धाम में जब पहुंचे, युधिष्ठिर तो अर्जुन को देखा कृष्ण के साथ में मुस्कुराते हुए देखा और उनका अभिनंदन करते हुए देखा। यदि हिमालय में अर्जुन मर ही गए होते तो कैसे गोलोक वैकुंठ में पहुंच गए? नहीं, वो मरे नहीं। क्रोध साई भगवान ने कहा, मेरा यह आदेश है कि जब तक मैं कृष्ण यहां पर लीला करेंगे तब तक देवता लोग यदुवंश में अवतीर्ण होकर के इस पृथ्वी में रहेंगे, तब तक जब तक कि कृष्ण लीला नहीं है। बल्कि कृष्ण अपनी लीला के पहले ही उनमें युद्ध करा करके और एक जाल जैसा दिखला करके और उनको स्वर्ग में पहुंचा दिया और अपने परिकरों को अपने से पहले वैकुंठ में पहुंचा करके गोलोक में और तब फिर गए। अब ये कंक्लूजन करते हैं कि कृष्ण वृंदावन में वृंदावनांतर्गत सदा क्रीड़ति माधव, कृष्ण गोप बालकों के साथ में, सखाओं के साथ में, बलदेव के साथ में, गोपियों के साथ में नित्य वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। किंतु सभी के द्वारा देखे नहीं जाते, अनुभव नहीं कर सकते, हम अभी अनुभव नहीं कर सकते। कभी कभी ये संदेह होता है जो वृंदावन यही वृंदावन है तो यहाँ के जितने लोग हैं सब नित्य मुक्त हैं, तो ये चोरी चमारी करते हैं, अत्याचार करते हैं, लुंठन करते हैं, तो फिर ये सब क्या चीजें हैं? और विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा है, यत्किंचित तृण गुल्म की कटमुखम गोस्ते ही समस्तम सर्वानंद मुकुंद दैतंग लीला अनुकूलम, सब कुछ चिन्मय है, सांप बिच्छू इत्यादि सब। तो ये मनुष्य क्या है? ये मुक्त महापुरुष और आनंद चिन्मय है और कृष्ण के लीला के उपकरण है? नहीं, ये सब माया के जाल के ऊपर में है। ऐसा करने से तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा पर जनयिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय वासुदेव कलानंत सहस्त्र वदन स्वरात अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं से, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान वहां पर पुरुष नहीं, ये तीन पुरुष हैं, इनके भी मूल पुरुष साक्षात भगवान माने स्वयं भगवान। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण स्वयं यहां पर अवतीर्ण होंगे। इसलिए वसुदेव गृह में साक्षात भगवान स्वयं भगवान आएंगे, ये कह रहे हैं। तो वो ब्रजेंद्र नंदन क्या है? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन होने से ये इनके ये प्रकाश हैं वासुदेव, इस रूप में ग्रहण करना चाहिए। स्वयं भगवान उनको भी कह सकते हैं, किंतु उनसे भी परम रूढ़ी वृत्ति ने ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को ही स्वयं भगवान मानना पड़ता है। कोई भेद नहीं है इस वाणी में, ये पूर्ण है, पूर्णतम मथुरेश, पूर्णतम स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम के रूप में ग्रहण करना होगा। तो वसुदगिर घर में साक्षात भगवान पुरुषा पर, पुरुषों से भी पर श्रेष्ठ, तीनों पुरुषों से भी श्रेष्ठ, उनके मूल अंशी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अवतीर्ण होंगे। जनयिष्यते तत्प्रियार्थम, तत्प्रिय अर्थम उनके प्रिय करने के लिए, अथवा तत्प्रिया अर्थम उनके प्रिया की प्रियाओं की सेवा करने के लिए गोपियों की सेवा करने के लिए सुर स्त्रिय भी जन्म ग्रहण करें, वो लोग भी जन्म लें। देवता लोग कृष्ण के अनुकूल और उनकी पत्नियां देवियां ये सब कृष्ण की प्रिया राधिका जी के प्रिय करने के लिए वो लोग भी जन्म ग्रहण करें। वासुदेव कलानंत सहस्र पदनस्वराट अग्रतो भविता देवेव हरे प्रिय चिकित्सया। वसुदेव कला अनंत वासुदेव कलानंत वासुदेव के जो कला है वो अनंत देव है। कैसे कला है? कृष्ण के वासुदेव हुए और वासुदेव जी के हुए संकर्षण, संकर्षण से महासंकर्षण या नारायण हुए, वो क्या कहते हैं उनको, वैभव 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 विलास ना वैभव। अच्छा, उनसे हो गए नारायण, उनके चतुर्भुज में हो गए महासंकर्षण, महासंकर्षण से कर्णाब्दशाही, उनसे गर्भोदशाही, उनसे ये क्षीरोदशाही है और उनका एक अंश सहस्रवदन अनंत देव है, शेष भगवान। शेष किस लिए? इस जगत की सृष्टि ध्वंस होने पर भी रहते हैं, सृष्टि होने के पहले भी रहते हैं, अभी भी वर्तमान है, इसलिए उनको शेष कहते हैं। स्वराट वो भी स्वराट हैं, ये जितने पांच या पांच तत्व हैं, संकर्षण उनके बाद में कर्णाब्दशाही, गर्भोदशाही, क्षीरोदशाही, शेष,